समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक लाएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल भी होगी। इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्व की जिनकी आज पुण्यतिथि है या जयंती। परिक्रमा के आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट सुदूर सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार और अभिषेक, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
हेलो सिद्धार्थ, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट सिद्धार्थ सिंह। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Campaigning intensifies for second phase of Lok Sabha elections. Polling in 88 parliamentary seats to be held on the 26th of this month.
आम चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी।
India set for significant overhaul of criminal justice system with three newly enacted laws, says Chief Justice of India D.Y. Chandrachud.
मौसम विभाग ने कहा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में सोमवार तक अत्यधिक गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। अगले कुछ दिनों के दौरान उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना।
इंडियन वीमेन फ्रीस्टाइल रेसलर्स विनेश फोगाट, अंशु मलिक, मानसी एंड रितिका स्टॉर्म इनटू द सेमीफाइनल्स ऑफ द एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स इन किर्गिस्तान।
और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम दिल्ली में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा।
एंड नाउ सिद्धार्थ, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन व्हिच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ। सो अप्रैल सिद्धार्थ इज अ स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ। And stress acts as an accelerator. It will push you either forward or backward, but you choose which direction. So let's start by talking about stress. What is it? Well, Siddharth, stress is a common feeling we get when we feel under pressure, overwhelmed or unable to cope. Small amounts of stress can be good for us and motivate us to achieve goals like taking an exam or giving a speech. But too much of it, especially when it feels out of control, can negatively impact our mood, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एंड रिलेशनशिप।
बिल्कुल, और जैसा कि अभिषेक आपने बताया कि अप्रैल का महीना राष्ट्रीय तनाव जागरूकता माह यानी नेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है ताकि लोगों में तनाव को लेकर परेशानियां और इससे होने वाले दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। अच्छी जीवन शैली के लिए तनाव को मैनेज करना यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। और आज हम देख रहे हैं कि अभिषेक की ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं जिसका मुख्य कारण बढ़ता तनाव है। और अभिषेक, हम जिस तरह से मेट्रोस में रहते हैं, हमारे यहाँ की लाइफस्टाइल, डेडलाइन पे काम करना लेकिन उसके साथ होने वाले स्ट्रेस को हम कहीं मैनेज करना भूल जाते हैं और वो स्ट्रेस हमारे अंदर रह जाता है और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
यस, एब्सोल्युटली। अप्रैल 1st मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रेस अवेयरनेस मंथ, एन एनुअल इवेंट डेडिकेटेड टू रिकॉग्नाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस इन आवर लाइव्स। It is the time to take a step back and assess how we can better manage the pressures of everyday life. Stress has been around since ancient times, but it has become increasingly prevalent in modern society as we strive to keep up with the demands of work, family and other commitments. But this month is all about finding ways to reduce stress and promote healthy living so that we can enjoy our lives to the fullest. So, Siddharth, stress can be extremely harmful for you or anyone for that matter. Stress symptoms can affect your body, your thoughts and feelings and your behavior. Knowing common stress symptoms can help you manage them. Stress is not dealt with can lead to many health problems, like you said, blood pressure, heart disease, stroke, ओबिसिटी एंड डायबिटीज।
बिल्कुल, ऐसे में अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो तो ये है अभिषेक कि इसके लिए हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा, क्योंकि हम सब चीज के लिए समय निकालते हैं लेकिन अपने लिए क्या आप निकालते हैं? ऐसा बहुत कम होता है। तो जब हम अपने लिए समय नहीं निकालते उन छोटी छोटी बातों को, जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, अपना खान पान हो गया, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। और ऐसा हम तब करते हैं जब तक हमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं जाती, या डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख नहीं देते कि भाई अब आपको वॉक करना है सुबह, अब आपने थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, अब आपको अपने लिए अपने खान पान में ये बदलाव रखना है, अब आपको अपनी शेयरिंग, क्योंकि बहुत सी बातें कई बार अभिषेक हमने देखा है कि ऐसी बातें होती हैं वो बात अपने अंदर घुस जाती है, फिर वो निकलती नहीं है, फिर वो पूरे टाइम दिमाग में चलती रहती है, स्ट्रेस देती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जब तक, तो ऐसे में अगर हम अपने किसी दोस्त से इन सब चीजों को शेयर करें तो हमारा तनाव जरूर कम हो सकता है। और तनाव के कारण उसको ठीक करने के उपाय, इन सब बारे में हमने बात की वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में मनोरोग विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाषा यादव से। आई जानते हैं उन्होंने क्या कहा।
अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे मीन्स फॉर मंथ, तो फिर क्या होता है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा कुछ जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है किसी भी व्यक्ति का, जो एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह है, तो लगातार तनाव में रहने पे कुछ ऐसे हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं, उनकी लगातार बढ़ी हुई मात्रा कुछ बीमारियां पैदा कर देती है। व्यक्ति को हाइपरटेंशन हो सकता है, वो डायबिटीज की तरफ जा सकता है, और अगर पहले से ही अस्थमा वगैरह से ग्रसित है तो वो परेशानी बढ़ सकती है, किसी को आर्थराइटिस है तो वो परेशानी बढ़ सकती है। बेहतर तो यह है कि अगर हम तनाव को नहीं लड़ पा रहे हैं, यानी उस तनाव रहित नहीं हो पा रहे हैं, तो हम किसी भी मनोचिकित्सक से मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में उनकी मदद ले सकते हैं। वैसे जो जनरल तौर पर हम किस तरह से तनाव रहित रह सकते हैं या तनाव ग्रसित होने से बच सकते हैं, तो उसके लिए कुछ एक जो सामान्य तौर पर कुछ ऐसी लाइफ स्किल्स हैं या कुछ रूटीन में हम कुछ ऐसी गतिविधियां अपनी रख सकते हैं रोजमर्रा की दिनचर्या में, अचानक कोई प्रॉब्लम कहीं आ भी रही है तो हम आसानी से उसे डील कर पाए। तो उसमें सबसे पहला तो ये होता है कि हर व्यक्ति को एक भरपूर नींद लेनी बहुत जरूरी है, 7 से 8 घंटे या 6 से 8 घंटे, सबका अपना अपना नेचर होता है, यानी शारीरिक आवश्यकता होती है। दूसरा यह है कि नींद लेने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा हम अपने ऊपर ध्यान दें, हम कुछ योगा प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, या कुछ लोग घूमना पसंद करते हैं, कम से कम आधा पौना घंटा हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, हम रिलैक्स भी हो सकते हैं उस वक्त, और कुछ अपना शारीरिक मीन्स कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अब ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तो उस समय भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारा मन खुश रख, और प्रॉब्लम कोई भी आती है तो शांति से बैठ के उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना, पैनिक सिचुएशन में नहीं लाना अपने आप को।
तो श्रोताओं, ये थी प्रोफेसर डॉक्टर अभिलाषा यादव जो कि मनोरोग विभाग में हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर हम देखें तो अभिषेक इमोशन से एक ऐसी चीज होती है जो एड्रेनलिन हार्मोन जो है हमारा सीक्रेट होता है और उससे हमारे अंदर इमोशंस आते हैं। क्या तुमको याद आ रहा है कि इससे पहले वो कौन सा लास्ट टाइम, वो कौन सा समय था जब तुम इतना हंसे थे, जब तुम्हारी आंखों से पानी आ गया था?
Now that you asked me, Siddharth, it has really been a very, very long time since I last had a hearty laugh, and I must say that it has been a long time indeed.
बिल्कुल, तो शायद यही हमारी डॉक्टर भी यही बता रही थी कि इन सब चीजों को अगर छोटे छोटे सफाए और अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप किसी न किसी साइकियाट्रिस्ट से जरूर मिले, क्योंकि तनाव आगे जाके फिर यही अभिषेक डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम बड़ी समस्या में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में पड़ जाते हैं।
Yes, and this year's theme is hashtag little by little. It highlights the idea that small consistent actions can have a huge impact on reducing stress and improving overall well-being. So, Siddharth, let's talk about 3 main causes of stress in today's world.
Yes.
In addition to what the good doctor has just told us, well, money is the number one cause, then work and poor health. These are the 3 main contributors of stress इन मॉडर्न टाइम्स एंड
तो अभिषेक आप ये कह रहे हैं कि मन पे ध्यान दें, मनी पे ज्यादा ध्यान ना दें.
नो, मनी इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. मन में मन इज देयर ऑफ कोर्स, बट मनी इज अनदर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर. एंड सो वी नो सिद्धार्थ दैट स्ट्रेस कैन बी डेडली. सो लेट्स कंक्लूड बाय लुकिंग एट थ्री वेज इन विच यू कैन बी स्ट्रेस. फर्स्टली टेक डीप ब्रेथ्स, स्ट्रेच और मेडिटेट. Secondly, try to eat healthy, well-balanced meals. And lastly, exercise regularly and get plenty of sleep. So these, Siddharth, are three surefire ways to beat stress.
बिल्कुल. और हम तो अपने listeners से, अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि
जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल. इसे खोना नहीं होके रोना नहीं, इसे खोना नहीं होके रोना नहीं. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल.
और श्रोताओं, इसके बाद अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और ये जानने का कि इनके पास क्या कुछ विशेष है. और अभिषेक, सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं?
यस, वी स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी अबाउट द नेवल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2024 हेल्ड एट INS हंसा गोवा ऑन द 14th of April 2024 टू फेलिसिटेट नेवल पर्सनल हु हैव डेमोंस्ट्रेटेड गैलेंट्री, लीडरशिप, प्रोफेशनल अकम्प्लिशमेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस of a high water. And during the ceremony, Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, conferred gallantry and distinguished service awards to the recipients on the behalf of the President of India. Let's hear more.
The awards presented during the Naval Investiture Ceremony 2024 at the INS Hansa in Goa include Navsena Medals Gallantry, Navsena Medals Devotion to the Duty and Vishisht Seva Medal. Chief of the Naval Staff, CNS Admiral R. Hari Kumar, presented the Gallantry and Distinguished Services Awards to the Naval Personnel on behalf of the President of India at an impressive ceremony. A total of 35 personnel were conferred with the various awards during the ceremony, which included the Navsena Medals Gallantry to the Commander Manish Singh Karki, Commander Kaustubh Banerjee, Lieutenant Commander Paneer Selvam Vishnu Prasanna and Lieutenant Commander Bhaskar. The awards were conferred to honor and recognize the bravery, leadership, professional achievements and distinguished service of the naval personnel.
During the ceremony, the Chief of Naval Staff Admiral R. Hari Kumar also presented the Lieutenant V.K. Jain Memorial Gold Medal for pioneering research in the field of weapon improvement and electrical engineering, as well as the Captain Ravi Gir Memorial Gold Medal for promoting flight safety. The CNS Trophy for Best Green Practices 2023 was awarded to Naval Dockyard, Mumbai and INS Vasura in the industrial and non-industrial categories respectively. The CNS also awarded unit citations to naval units for their outstanding services over the past year. The recipients were Indian naval ships Tag, Kolkata, Karmuk, Sumedha, Sumitra and Shraddha. Submarine INS Sindhu Kesari, Flight Squadron INS 550 and Shore Establishment Chilka, Shivkras, Ixila, Dronacharya and Naval Ship Repair Yard Karwan.
The Naval Investiture Ceremony 2024 INS Hansa was attended by the spouses and families of awardees as well as the senior officers of the Indian Navy. The Chief of the Naval Staff, Admiral R. Hari Kumar, lauded the award winners for their acts of bravery and distinguished services and complimented their family members for the unstinted support to the naval personnel. The ceremonies such as this certainly boost the morale of our defense personnel. Tushar Jadhav for Parikrama, Akashwani, Panaji, Goa.
और अब हम रुख करते हैं पंजाब का, जहां लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अंतिम चरण में 1 जून को होगा. ऐसे में विभिन्न जिलों का प्रशासन लोगों को भारत निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान करने के लिए जागरूक कर रहा है. इस दिशा में अनेक रोचक तरीके भी अपनाए जा रहे हैं. और इसी कड़ी में होशियारपुर में जहां डफली बजाकर भांड कला से प्रचार किया जा रहा है, तो मलेरकोटला के जिला उपायुक्त और निर्वाचन अधिकारी डॉ पल्लवी ने भी एक बड़ा ही यूनिक तरीका निकाला है मतदाताओं को जागरूक करने का, जिसका नाम है समझदार बेगम. तो आइए जानते हैं क्या है.
पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान अंतिम चरण में 1 जून को होना है और ऐसे में तब तक मिले इस समय का भरपूर सदुपयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों का प्रशासन अपने अपने इलाकों में रोचक अंदाज में निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनेक कदम उठा रहा है। होशियारपुर के जिला स्वीप नोडल अधिकारी प्रीत कोहली के नेतृत्व में बड़े ही नाटकीय व आकर्षक अंदाज में पारंपरिक डफली बजाते हुए भांड कला के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की एक पहल की गई है। इस टीम ने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर विशेष रूप से श्रमिकों को प्रोत्साहित किया। टीम ने श्रमिकों को समझाया कि केवल एक ईंट न लगने से दीवार की मजबूती कैसे प्रभावित होती है, तो ठीक इसी तरह एक वोट न डालने से लोकतंत्र की मजबूती पर कैसे असर पड़ता है। इधर मालेरकोटला के जिला उपायुक्त व निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पल्लवी ने जिले के लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए चुनावी गतिविधियों से जुड़ा मस्कॉट समझदार बेगम जारी किया है।
दिस इज विद द फोकस टू रीच आउट टू मैक्सिमम वोटर्स स्पेशली सारे फीमेल वोटर्स एंड यूथ वोटर्स हु होर असी इलेक्शन दे विच हिस्सा लेने दे लिए प्रेरित कर सके। इस मोटिव दे नाल असी मैस्कॉट नू लॉन्च किया है। समझदार बेगम का ए रोल रहेगा कि शी विल एक्ट एज ए गाइड टू ऑल द वोटर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उम्मीद है कि इना दे नाल कोई भी किसी नू कोई डाउट है या कोई भी असिस्टेंस चाहिए हैगी है, कोई हेल्प चाहिए हैगी वो असी प्रोवाइड कर सकिए।
उम्मीद की जानी चाहिए कि ये अनोखी पहल मतदाताओं को अपना वोट डालने के प्रति अवश्य प्रोत्साहित करेगी और इससे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के लिए रखे गए इस बार 70 पार के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। परिक्रमा के लिए जालंधर से शिशु शर्मा शांतल।
In the Union Territory of Jammu and Kashmir, the voters, undeterred by the weather vagaries, across the extensive canvas of the 5 districts of Doda, Kathua, Kishtwar, Ramban, and Udhampur, participated in their polling as they embraced their civic duty with fervor and exhibited unwavering determination. Undaunted by the challenges, the polling parties ensured the first phase of polls in Jammu and Kashmir with resolve. To know more, let's listen to a Srinagar correspondent, Sunil Kaul.
The polling for first phase of general elections to 18th Lok Sabha in parliamentary constituency Udhampur concluded peacefully yesterday. The voting percentage was around 68.27%. There were 2,637 polling stations set up for 16.23 lakh electors of 5 districts. More than 11,000 polling staff has performed poll duty yesterday. Actual polling started from 7 in the morning and continued till 6 in the evening, and at every polling station, basic minimum facilities of water, electricity, toilet, ramp, waiting room, etc. were made. Even wheelchairs and helpers were provided to needy voters. Around 1,440 polling stations had CCTVs for live webcasting to control rooms. In order to ensure inclusive voting, 90 number of polling booths manned by women, also called as pink polling stations, 40 number of polling booths manned by specially abled persons, and 70 number by youths. Also, in order to spread a message about environmental concern, there were 20 green polling stations. To facilitate voters' identification, apart from epic card, other documents such as Aadhaar card, bank passbooks, driving license, PAN card, government employee ID card, etc. documents were also allowed as per ECI directions. Media facilitation was done through the passes for more than 660 journalists. Under the overall supervision and guidance of the Election Commission of India, Chief Electoral Officer J&K and respective DOs encouraged all eligible voters to come forward and cast their votes responsibly. This is Sunil Kaul for Parikrama from Srinagar, Kashmir.
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile, giving details on number of phases, date of polling, number of seats and other relevant facts via correspondence. First, let's go to Assam.
लोकसभा चुनाव के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर आकाशवाणी प्रोफाइल प्रस्तुत कर रही है। आज इस श्रृंखला में असम के सिलचर क्षेत्र की जानकारी दी जा रही है। दक्षिण असम के करीमगंज की बराक घाटी के साथ सिलचर के मतदाता भी 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण में वोट डालेंगे। इस वर्ष सिलचर में लोकसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी तथा विपक्षी कांग्रेस ने नए उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं।
सिलचर निर्वाचन क्षेत्र पूरे कछार और हैलाकांडी जिले के कुछ हिस्सों को समाहित करता है। उत्तरी कछार पहाड़ियों और बराक नदी के मार्ग के बीच स्थित ये क्षेत्र प्राचीन कछारी साम्राज्य का हिस्सा था। बांग्ला भाषी लोगों के अतिरिक्त दिमासा, मणिपुरी और कुछ अन्य जनजातियां यहां बहुसंख्यक हैं। 2023 के परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है जब ये अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। परंपरागत रूप से ये सीट एक बार को छोड़कर कांग्रेस और भाजपा के पास रही है, जब CPIM के उम्मीदवार यहां से विजयी हुए थे। इस वर्ष सिलचर मतदाताओं की कुल संख्या 13,74,559 है, जिसमें महिला और पुरुष मतदाताओं की संख्या समान है और ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 25 है। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1,551 है। सिलचर सीट पर कुल 8 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार के विधायक और असम के मंत्री परिमल सुखिया वैद्य पहली बार सिलचर से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार सूर्यकांत सरकार भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने राधेश्याम विश्वास को मैदान में उतारा है, जो इस सीट के अंतिम परिणाम के लिए एक निर्णायक कारक बन सकते हैं। शाश्वती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह।
In a series covering profiles of key constituencies across states and union territories during the Lok Sabha elections, today we bring a report on the Amroha Lok Sabha constituency of Uttar Pradesh. In the second phase of Lok Sabha elections, polling will be held for 8 constituencies including Amroha constituency in Uttar Pradesh on the 26th of April. Our correspondent Sushil Chandra has more in this report.
In Lok Sabha elections 2024, second phase polling will be held on 26 April in Amroha parliamentary constituency to decide the political fate of total 12 candidates, including 8 independent contestants. A total number of 17,13,154 voters here, including 9,06,779 male voters, 8,06,318 female voters and 57 transgender voters. Bharatiya Janata Party has fielded Kamar Singh Tawar for third consecutive time. Kamar Singh Tawar has won on this seat in 2014 general elections, defeating Humaira Akhtar of Samajwadi Party. But in 2019 elections, he had to face defeat when BSP candidate of SPBSP alliance Kumar Dalish Ali emerged victorious. This time also the main contest appears between BJP candidate Kamar Singh Tawar and Congress candidate of SP Congress alliance Kumar Dalish Ali. Bahujan Samaj Party has fielded a new face, Mujahid Hussain, for this seat. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember the freedom fighter and maestro of Hindustani classical flute music, Pandit Pannalal Ghosh, who died on the 20th of April 1960. During his young days at Barisal, Pannalal was active in the freedom struggle, and in the formative phase of his career, he also came under the influence of Gurudev Rabindranath Tagore and Qazi Nazrul Islam, who helped instill the nationalistic outlook in him. A disciple of Alauddin Khan, Pannalal is credited with popularizing the flute as a concert instrument in Hindustani classical music and also the pioneer of Indian classical flute.
Pannalal was born on the 24th of July 1911 at Barisal, now in Bangladesh, in a family of musicians. Young Pannalal was highly receptive and absorbed good music from various sources. In 1928, Ghosh became a part of the Indian independence movement. He joined a gymnasium and learned martial arts, boxing and Sikh fighting.
As he became more involved in the independence movement, the government started keeping a close watch. He had to flee to Kolkata. His childhood friend and brother-in-law, Anil Biswas, also came to Kolkata due to his political leanings.
In Kolkata, Kolkata, Pannalal honed his musical skills and assisted in music production. In 1940, he moved to Bombay to further expand his music career. He joined the Bombay Talkies Film Studio and gave music to quite a few popular films.
और श्रोताओं, कार्यक्रम परिसमा में अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है या जन्मदिवस। और आज हम सबसे पहले याद कर रहे हैं शकील बदायूनी को, जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा, जो महान शायर और गीतकार थे। शकील बदायूनी ने 1946 में वो मुंबई आ गए थे और 1947 में अपनी पहली ही फिल्म दर्द के गीत अफसाना लिख रही हूं की अपार सफलता से शकील बदायूनी कामयाबी की बुलंदियों पर जा बैठे।
अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिल बेकरार का आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही।
शकील बदायूनी ने करीब 3 दशक लंबे अपने फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे। उन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में संगीतकार नौशाद के साथ की थी। शकील बदायूनी को अपने गीतों के लिए लगातार 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नवाजा गया, जिनमें वर्ष 1960 में चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो, 1961 में हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं और 1962 में कहीं दिन चले कहीं दिन 20 साल बाद। तो आइए सुनते हैं फिल्म चौधरी का चांद हो।
चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
Carmen Electra was born on this day in 1972. She is an American actress, model, singer and media personality. She began her career as a singer of where she met Prince, who produced her self-titled debut studio album released in 1993. Electra began glamour modeling in 1996 before relocating to Los Angeles, where she had a breakthrough portraying Lani McKenzie in the action drama series Baywatch from 1997 to 1998.
और राजी जयंती है उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती की। वर्ष 1930-1938 के बीच का समय इनके लेखक जीवन का महत्वपूर्ण समय माना जाता है। गोपीनाथ मोहंती को 1973 में साहित्य में उनके योगदान के लिए साहित्य के सबसे बड़े सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। बाद में 1981 में भारत सरकार ने इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया था।
Joseph Lawrence Mignogna III was born on this day in 1976. He is an American actor, musician, singer-songwriter, record producer, podcaster and game show host. He was a child actor in the early 1980s, portraying Joey Russo in Blossom and Joe Longo in Melissa and Joey. Lawrence also starred in Give Me a Break and Brotherly Love series with his real-life brothers Matthew and Andrew. His film appearances include Summer Rental and Oliver and Company.
और राजी जयंती है भजन गायिका जिदका राय की। उन्होंने अपने 4 दशक लंबे करियर में 200 से ज्यादा हिंदी और 100 से अधिक बांग्ला गीतों को अपनी आवाज दी। जितिका रॉय को 1972 में कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था।
राजीव मेनन वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1963। ही इज अ फिल्म मेकर हु हैज वर्क्ड एज अ डायरेक्टर एंड सिनेमाटोग्राफर इन सेवरल इंडियन रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज। आफ्टर मेकिंग हिज ब्रेक थ्रू एज अ फिल्म सिनेमाटोग्राफर विद मणिरत्नम्स तमिल ड्रामा बॉम्बे इन 1995, मेनन हैज कंटिन्यू टू कोलैबोरेट विद रत्नम ऑन अदर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग गुरु इन 2007 and Kadal in 2013।
और राजी पुण्यतिथि है देश के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीरा चंद ओझा की। इन्हें इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन लिपियों में विशेषज्ञता प्राप्त थी। वर्ष 1937 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया था।
एंड ऑल्सो शकील अजमी वॉज बोर्न ऑन दिस डे 1971। ही इज अ लिरिसिस्ट एंड पोएट बोर्न इन अजमगढ़ इंडिया। He writes in Urdu language and is primarily known for his contribution as a film lyricist in Bollywood. Most of his poetry revolves around ghazals, a genre of Urdu poetry.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। एक खूबसूरत शाम की कामना के साथ अनुमति दीजिए सिद्धार्थ सिंह और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं nfu.nst@nic.in पर दे सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।